आज तो किसी सवाल से शुरू करते हैं। आपके जहन में दो तीन सवाल जोर मार रहे हैं तो फरमाइए।
सर, ये आपने एक बात कही थी एक अपने लेक्चर में कि मैं बैत नहीं लेता, और किसी और लेक्चर में ये बात कही थी, वो उसमें मैं नहीं शरीक हुआ। मैंने सुना है कि आपने फरमाया है कि जी मेरे पास अब टाइम कम रह गया है, बस अब चल चलाओ का वक्त है। क्या इसका ये मतलब है कि जो इल्म आपके पास है वो आपके साथ चला जाएगा? इसके अलावा एक और सवाल है, वो ये है कि मुमताज मुफ्ती साहब ने आपके बारे में फरमाया है अपनी किताब में कि जी जो इल्म सरफराज साहब के पास है वो दुनिया में एक वक्त में एक शख्स के पास होता है, तो इसकी भी कुछ थोड़ी जरा का डिटेल पता लग जाए।
देखिए साहब, इसके अंदर एक चीज क्लेरिफाई आपसे मैं करना चाहता हूं। जब बैत पर गुफ्तगू का सिलसिला हमारा शुरू हुआ था तो मैंने उस वक्त एक चीज एक्सप्लेन की थी कि जब आप बैत करते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि जिनके हाथ पर आपने बैत किया है जो कुछ वो फरमाएं उनके कहने के मुताबिक आप अमल करें, अनलेस कि वो ऐसी बात कह दें जो रब ताला के हुक्म से टकराती हो। और बाद की नशिस्तों में मैं ये एक्सप्लेन करता रहा कि ऐसा क्यों है। तो उस वक्त भी मैंने ये अर्ज किया था कि ये एहतमाम अदब का और फर्माबरदारी का इसलिए किया जाता कि जब तक आप किसी उस्ताद की इज्जत नहीं करेंगे, उसे अपने से सुपीरियर नहीं मानेंगे, उस वक्त तक आप उससे सीख नहीं सकते। तो वो आपको सही रास्ते पर आपके मुर्शिद चलाते हैं, जहां आप कदम डगमगाने लगते हैं, पांव बहकता है कहीं, तो वो आपको उसी वक्त पॉइंट आउट कर देते हैं कि गलती होने लगी है, इसको ठीक कर लें आप। ये सारा इसके पीछे कंसेप्ट है। किस्सा वहां भी इल्म लेने का है, लेकिन वहां अपने आप को बांध के आपने इल्म लिया। मैं ये अर्ज करता हूं हर एक से कि भाई, जो दो लफ्ज रब ताला ने मुझको सिखाए हैं, अता फरमाए हैं, वो कोई आगे ले जाए, कभी नहीं रोकूंगा। दुआ के लिए लोग आते हैं तो अक्सर दुआ के दौरान कोशिश करता हूं कि उन तक कुछ ना कुछ पहुंचा दूं, दो चार लफ्ज। उससे बहुत से मेहरबान नाराज भी होते होंगे दिल में कि हम तो इससे दुआ कराने आए थे, ये हमको क्या सिखा रहा है। तो वो इल्म ही की बात होती है असल में। अगर कोई आदमी आता है और मैं देखता हूं कि हर इतवार आके वो, कभी उसका कुत्ता बीमार होता है तो उसकी लिए कि मैं बड़ा सख्त परेशान हूँ, मेरा कुत्ता बड़ा बीमार है, उसको दो बार खांसी आ चुकी, दुआ कर दें मेरी परेशानी अल्लाह दूर कर दे, कुत्ता ठीक हो जाए। कोई खातून आ जाती हैं, रो रही धड़ाधड़ बैठी, क्या होगा बीबी, मेरा अल्सेशन था वो गुम हो गया, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अब जब ये देखता हूँ कि हर घड़ी ये बंदा परेशान ही इन बातों के लिए, और ये आज मेरा एक ग्लास टूट गया, बड़ी सख्त परेशानी है, दुआ कर दें, किसी ने जादू किया हुआ है, ऐसी दुआएं होती हैं आमतौर पर। तो उनको फिर ये कहता हूं, भाई किस चीज के पीछे लगे हो, तो अल्लाह के पीछे ही लग जाओ। तो ऐसी बातें जब करता हूं वो लोगों को पसंद नहीं आती। तो ये इल्म की बात होती है असल। तो ये इल्म जिस हद तक कोई मुझसे वसूल करना चाहता है मैं तो पेश कर देता हूं, जो कुछ भी थोड़ा बहुत है मेरे पास, तो अपने साथ ले जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये जरूर है कि मैं पीरी मुरीदी से बड़ा घबराता हूं, कि मेरे लिए ऑलमोस्ट नाकाबले बर्दाश्त होता है कि कोई हाथ चूमे, मेरे घुटनों को हाथ लगाए, मेरे सामने झुककर मुझसे मिले, वो कुछ उस तरफ मैं मायल नहीं होता। या मैं जब तक न कहूं तो लोग महफिल में ना बैठे, मैं चिढ़ता हूं अंदर से। दर हकीकत मुझे तो सीधी सीधी जिंदगी चाहिए। उसकी एक शायद वजह यह है कि बचपन में यह पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कराम की महफिल में तशरीफ लाते थे तो अगर कभी देर से आए तो जहां जगह मिली वहीं बैठ गए, सब एक ही लेवल पर बैठते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई दो चार पाँच फुट ऊंचा डाइस मुकर बनाया गया हो आप वहाँ तशरीफ रखते हो। ना कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस की सूरत में चले थे, ना हटो और बचो की सदाएं आती थी वहाँ की, ना सहाबा कराम कभी ज़मीन पे लेट के पाँव चूमते थे। तो जब ऐसी कोई नज़ीर सुन्नत में नहीं मिलती है तो मैं कैसे करूं? तो यूं मुझे महफिल में नुमायाँ होकर बैठना गवारा नहीं है कि ये सुन्नत नहीं है, ना मैं जुलूस की सूरत में चल सकता हूं। तो इसलिए मैं पीरी मुरीदी से बड़ी दूर भागता हूं कि एक बार अगर बैत करनी शुरू कर दी तो सिलसिला वही जुलूस का सा बन जाएगा और वो खिलाफ सुन्नत है बात। बाकी रह गई ये बात कि मुमताज मुफ्ती साहब ने ये फरमाया था, मैं तो ये अर्ज नहीं करता अपने बारे में, ना ये मुझे दावा है ना जोम है। हकीम सईद साहब के एक फर्स्ट कजिन थे हकीम रहमतुल्लाही साहब, नहायत अच्छे इंसान थे, उनको अल्लाह ने एक सिफ्त ये अता फरमाई थी, अहले जुबान थे कि जबकि किसी से शुरू में मिलते थे तो उसके दिल में उतर जाते थे, लेकिन तबीयत में शरारत भी थी तो उस शरारत की वजह से फिर उतनी जल्दी दिल से उतर भी जाते थे। तो एक बार वो मुझे मिले मेरी वाइफ के एक रिलेटिव के ज़रिए से, तो कुछ दिन के बाद मुझे कहने लगे कि जी आप सुना एक बुज़ुर्ग के पास जाते हैं। मैंने कहा जी हाँ। कैसा मुझे भी मिलवा दीजिए। तो मैंने बड़े शाह साहब से इजाज़त ले ली कि सब इस तरह मिलना चाहते हैं आपसे, फरमाने लगे ले आओ। तो चूँकि बड़े शाह साहब ख़ुद भी अहले ज़ुबान थे, उर्दू स्पीकिंग थे, ये साहब भी उर्दू स्पीकिंग थे, और वैसे भी इनको अल्लाह ने वो सिफ़त अता फरमाई थी दिल में घर कर जाने की, तो ये बड़े शाह साहब के बहुत करीब हो गए। तो मैंने देखा कि जब भी हकीम रहमतुल्लाही साहब बड़े शाह साहब के पास तशरीफ ले जाते थे तो वो कुछ कैलकुलेशन इन्हें सिखाया करते थे, तो मैं बैठ के देखता रहता था। तो थोड़े अरसे में वो बात समझ में आने लगी कि बड़े शाह साहब उनको एक मखसूस इल्म अता फरमा रहे हैं। तो सच्ची बात यह है कि मेरे दिल में आया कि शाह साहब ने मेरे साथ तीन तीन रिश्ते जोड़े हैं। सबसे पहले तो उन्होंने एक बार एक भरी महफिल में ये अनाउंस कर दिया कि ये सरफराज मेरा बेटा है, तो मुझे सच्ची बात है बहुत ज़ोम था कि मुझे बेटा बनाया हुआ है बड़े शाह साहब ने। दूसरा फिर इसी तरह महफिल में बैठे हुए थे तो पता नहीं क्या दिल में आई तो कहने लगे आज से अपनी जेब मैंने इसे अता कर दी। फिर कुछ अरसे के बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मेरे मुर्शिद के एक ही खलीफा थे और मेरा भी एक ही खलीफा होगा और ये बैठा। मेरी तरफ इशारा करके कह दिया तो वो खिलाफत भी मिल गई। अब ये तीन जोम थे मुझे। तो मैं जब गया था बड़े शाह साहब के पास तो अजीब गरीब ही किस्सा हुआ था, कुछ मेरा काम था जाती, तो मैं उसके लिए अल्लाह के हजूर दुआ किया करता था। एक बुजुर्ग गुजरे हैं जो नागपुर में दफन हैं, बाबा सैयद ताजुद्दीन औलिया, बहुत कमाल के बुजुर्ग हैं, उनका हुक्म आज भी जारी और सारी है दुनिया में। तो वो मैं बैठा था एक दिन जा नमाज पे अपने तस्बीहात मुकम्मल करके, रात को एक डेढ़ बजे का वक्त होगा, तो बाबा सैयद ताजुद्दीन औलिया तशरीफ लिया है तो मुझसे कहने लगे कि शक्ल दिखाई मेरे मुर्शिद साहब की, इनके पास चले जाओ। तो मैंने सोचा कि तो बिगड़ जाते हैं फौरन ही, इनके पास कौन जाए, ये शुरू की बात है, बहुत पुरानी बात है, तो मैं तो नहीं जाता इनके पास। वो चूँकि मगरबी तालीम थी, कुछ सरकारी नौकरी का असर था तो अकड़, और मैं तो नहीं जाता, ये तो पागल आदमी है, मैं इनके पास क्यों जाऊँ। वो फिर अगले दिन तशरीफ ले आए बाबा सैयद ताजुद्दीन औलिया, तो फिर ज़रा सा मुझे कहने लगे कि इनके पास चले जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं गया तो तीसरे दिन फिर तशरीफ ले आए, तो फिर खासी तफसील से मुझसे बात की और बात एक शक्ल दिखा के दोबारा कहा कि इनके पास चले जाओ, इनसे दुआ के लिए कह दो, अगर ये दुआ कर देंगे तो तुम्हारा काम फौरन हो जाएगा। तो मैं गया इनके पास बड़े शाह साहब के पास, कहने लगे कैसे आए, क्योंकि हुआ ये था कि इनके पास मैं दो तीन महीने से जा रहा था तो फिर मैं अकड़ गया नहीं गया, तो वक्फा काफी लंबा था 6-7 महीने का। तो कहने लगे कैसे आए, तो तो मैंने कहा कुछ नहीं, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपको सलाम करता जाऊं। कहने के अच्छा सलाम कर लिया? मैंने कहा जी, कि जाओ। मैं दिल में कहा मैं तो पहले ही कह रहा था पागल है ये आदमी। फिर दो तीन दिन के बाद मैं चला गया, बड़े अखलाक से मिले। हाँ कहो कैसे आए? फिर तो मैंने कहा कुछ नहीं, दिल चाह रहा था आपसे एक कप चाय पिया जाए। तो मैं हाजिर हो गया कि हाँ बैठो, मैं अभी पिलाता हूँ तुम्हें। चाय वाय पिला ली। तो जब मैंने कप चाय का रखा पीने के बाद, कहने के चाय पी ली तुमने? मैंने कहा जी। कि अब जाओ। ठीक है, वो काम जरूरी था मेरे लिए तो मुझे थोड़ा बेचैनी थी उससे। फिर मैं दो चार रोज के बाद चला गया तो मैं खुद ही पूछा, ओ मियां तुम बार बार आ रहे हो, कोई काम है क्या मुझसे? मैंने कहा जी काम है। कि कहो क्या काम है? मैंने कहा जनाब बात यह है, ये मेरा काम है तो मैं कभी ना आता आपके पास, लेकिन ये बाबा सैयद ताजुद्दीन औलिया तशरीफ लाए थे, उन्होंने आपकी शक्ल दिखा के मुझसे कहा, आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कहीं और कहा कि इनके पास चले जाओ, दुआ के लिए इन्हें कह दो, ये दुआ कर देंगे तो तुम्हारा काम फौरन हो जाएगा। तो यूं मैं आया हूं। तो वो तो बिगड़ गए बड़े शाह साहब, शदीद गुस्सा, तो आंखें उबलाई बाहर को। लेकिन इतना शुक्र हुआ कि उस गुस्से का रुख बजाय मेरी तरफ होने के बाद सैयद ताजुद्दीन औलिया की तरफ हो गया। तो वो कौन होता है लोगों के भेद खोलने वाला? इसको तो आज रात को मैं सीधा करूंगा, लोगों के पर्दे खोलता है ये। शुक्र है इन दोनों के दरमियान है लड़ाई, ये जाने। तो मुझे कहने लगे मियां एक काम करो, तुम फला तारीख को ठीक 6 बजे आना, टाइम की पाबंदी का ख्याल कर लेना, एक मिनट ऊपर ना होने पाए। ठीक है जनाब। तो मैं 6:45 बजे वहां पहुंच गया उस तारीख को। तो घड़ी हाथ से खोल के सामने रख ली और मुझसे बात करने लगे, नजर घड़ी पे थी, उधर ठीक 6:00 बजे। तो मुझे कहने लगे कि ये पढ़ लिया करो, अल्लाह ताला माफ करे उस लफ्ज के लिए, बड़ी अब तो मुझे मालूम है बड़ी जोरावर पढ़ाई है। वो बज़ाहिर बड़ा मामूली सा हरफ था, लफ्ज तो क्या हरफ था वो। तो मैं थोड़ा अपसेट हुआ कि क्या बताया पढ़ने को इन्होंने, क्या चीज है ये? मैंने कहा जी बस इतना ही है। कि हाँ बहुत है ये। तो मैंने कहा जी इससे काम हो जाएगा? कि हाँ फौरन हो जाएगा। तो मैंने कहा जी इससे कैश हासिल हो जाएगा? कि हाँ कैश हासिल हो जाएगा। इससे करामात हासिल हो जाएंगी? कि हाँ हो जाएंगी। इससे वलायत मिल जाएगी? हाँ हाँ मिल जाएगी, जो कहूंगी इससे हो जाएगा हो जाएगा। मैंने कहा क्या इन्होंने गिदड़ सिंह दे दी कोई मुझे? महाराज वो तो काम की लगन थी कि करना है तो शुरू हो गया काम। उसको पढ़ना शुरू किया तो उस वक्त मैं कहता था अल्लाह उसके लिए मुझे माफ कर दे कि बड़ी क्या ये लफ्ज बताया। वो एक लफ्ज था जो बताया उन्होंने, रादर एक हरफ। तो इन हकीम साहब को वो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन सिखा रहे थे। तो मेरे दिल में आई कि इतने रिश्ते कायम किए हैं मेरे साथ शाह साहब ने, मुझे नहीं दिया, इनको ये सब सिखा रहे हैं। फिर एक दिन वो सिखा रहे थे तो मेरे दिल में यही ख्याल आ गया। जब तीसरी बार आया हकीम साहब उठ के चले गए तो बड़े शाह साहब मेरी तरफ मुड़े, कहने लगे देखो मियां बात यह है, हमें फकीर, हमारे पास जो जिस नियत से आता है हम उसको वैसी ही चीज अता करते हैं। तुम्हारी शक्ल बहुत देर पहले मुझे दिखा के बता दिया गया था कि तुम्हारा हिस्सा है मेरे पास जो मैंने देना है तुम्हें, लेकिन तुमने आने में देर कर दी बहुत, तो जब तुम आए तो मैंने तुम्हारा हिस्सा तुम्हें फौरन दे दिया। हकीम साहब आए थे मेरे पास तो दिल में ये नियत थी कि मुझसे ऐसा इल्म ले लें जिससे लोगों के सवालात का जवाब सही दे दिया करें और उससे 4 पैसे कमा लिया करें। तो मैंने उनको सितारों का इल्म दिया है, तो ये उससे सवालों का सही जवाब निकाल के कैलकुलेशंस करके वो लोगों को बता दिया करेंगे तो इनको रोज के 150 रुपए मिल जाया करेंगे। तुम्हें मैंने इल्म दिया है ऐसा इल्म जो एक वक्त में सिर्फ एक आदमी के पास होता है, कभी दो के पास नहीं हुआ ये। तो वो तो कैलकुलेशंस करते हैं, तुम सिर्फ ऊपर को निगाह उठाओगे और देख लिया करोगे कि क्या चीज कहाँ है। तो यूं ये बात जो थी वो मेरे इल्म में आई। तो मैं आगे से जरा हंसा, तो मैंने कहा कि हजूर फिर अब तो दो के पास हो गया ये। कहने लगे कैसे? तो मैंने कहा जी एक आपके पास एक मेरे पास, तो दो आदमी तो हो गए। कहने लगे तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हारे पास इल्म उस वक्त मुकम्मल होगा जिस दिन मैं रुखसत हूंगा और तुम मुझे दफन करके 72 कदम पीछे आके दुआ करोगे तो उस वक्त तुम भर दिए जाओगे, तो ये एक वक्त में एक ही के पास रहेगा। वो वाकई मैंने देखा कि जब बड़े शाह साहब पर्दा फरमा गए तो उन्हें दफन करके हम 72 कदम पीछे आके हमने फातिहा पढ़ी, तो उसके फौरन बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं एक नई शख्सियत बन गया। तो वो उसी चीज को, क्योंकि मुमताज मुफ्ती साहब राइटर हैं तो उन्होंने बड़े शायराना अंदाज में, बड़े अदबी लिटरेरी अंदाज में वो बात कह दी, तो उसकी ये बैकग्राउंड है। लेकिन लेके नहीं, अपने साथ जाऊंगा इस इल्म को, जो चाहे मुझसे ले ले, लेकिन ये तकदीर का भी मामला है। इस ज़िम्न में ये याद रखिएगा कि जनाब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह बेपनाह प्यार करते थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया भी जवाब में उनसे उतना ही प्यार करते थे। तो एक दिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ये सोचा कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को इल्म अता कर दिया जाए। तो आपने उन दिनों जो सनद की तस्दीक है उसकी ड्यूटी पर जनाब हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली मामूर थे, तो आपने कुछ बर्तनों में खाने की चीज़ें डाली, उसे एक थाल में रखा और ऊपर उसके कवर दे दिया कपड़े का, और हज़रत अमीर खुसरो से कहा कि जाके ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को दे दो, उनको चिराग दिल्ली साहब को दे दो, और उसके जवाब में जो कुछ वो कहें वो आके तुम मुझे बता देना। हज़रत अमीर खुसरो वो लेके चले गए थाल और जाके हज़रत चिराग दिल्ली साहब की खिदमत में पेश कर दिया और अर्ज़ की कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने भिजवाया है मेरे ज़रिए आप तक। तो कपड़ा उठाया, उसमें से जो बर्तन पड़े थे उसका सारा खाना अपने पास उलट के, तो प्यालियाँ साफ करके दोबारा उसमें रख दी और ऊपर वो कपड़ा दे दिया, कहा ये खाली बर्तन ले जाओ वापस। वो ले आए तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने पूछा कि खुसरो दे आए आप? कि जी, कि उन्होंने कुछ फरमाया कि नहीं? कुछ नहीं कहा उन्होंने, तो वो रख लिया और ये खाली बर्तन वापस कर दिए। तो कहने लगे कि भाई अब ये आपकी तकदीर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अगर इन बर्तनों में वो कुछ डाल के भर के वापस कर देते तो ये इल्म मैं आपको दे देता, लेकिन वहाँ से मंजूरी नहीं हुई है इसलिए तुम्हें कुछ मैं दे नहीं सकूँगा। तो यूँ हज़रत अमीर खुसरो को ये इल्म लुदनी अता नहीं किया, लेकिन चूंकि प्यार बहुत था और हज़रत अमीर खुसरो ने खिदमत बहुत की थी तो उसको कंपनसेट ज़रूर किया। वो इस तरह से किया कि फिर अपना सलाम अता कर दिया, तो ये हुक्म कर दिया कि जो शख्स मेरे पास आना चाहे पहले अमीर खुसरो के जाए सलाम करे फिर मुझ तक आए। तो वो इल्म में तकदीर का किस्सा भी है, लेकिन मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं है, बल्कि औलिया इकराम के अंदर जो साहिब इल्म हैं उनके अंदर ये बात मशहूर है मेरे बारे में कि मेरे पास जो आता है मैं अंधाधुंध से इल्म दे देता हूँ, और जितनी मकदार मुझसे दी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा वो एक ही दम अता कर उसको दे देता हूँ, पास ऑन कर देता हूँ। उसी सिलसिले में हो ये जाता है बाज़ुकात, यहाँ इस वक्त भी वो कुछ लोग मौजूद हैं जिनको मैंने इल्म दिया, उनको अल्लाह ने कश्फ भी अता फरमा दिया, करामात तक भी पहुँच गए, ज़ुबान में तासीर भी पैदा हो गई, लेकिन चूंकि तरबियत नहीं उनकी हुई थी तो जब आए मैंने दे दिया ले जाओ मैं जाओ। तो इल्म ने तो अपना काम दिखाया लेकिन तरबियत थी नहीं कि संभाल सकते, तो बहक गए, जब भटके तो छिन गया। तो यहां मेरे पास जो आने वाले ये दावा नहीं है, ये मैं इल्म पास करने की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, कोई दावा नहीं। आमतौर पर तजर्बा लोगों का यही हुआ है कि वो लोग जो यहां इल्म लेने आए ढाई साल के अरसे में अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, उनको कश्फ करामात दोनों हासिल हो गए। तो वो इल्म जरूर दूंगा कोई लेने वाला हो। यहाँ वो लोग मौजूद हैं जिनको अल्लाह ने साहिब कश्फ करामात किया ढाई ढाई साल में। तो लेकिन तरबियत ना होने से भटक जाते हैं लोग, दुनिया कह लीजिए या शैतान कह लीजिए भटका देता है। वो यही दिल में डालता है शैतान कि तुम तो बहुत बड़े वली अल्लाह बन गए, अब लोगों के लिए दुआएं करो, पीर बन जाओ। अब खलके खुदा को जब फायदा पहुंचता है तो वो घुटनों को हाथ लगाते हैं, हाथ चूमते हैं, आगे पीछे फिरते हैं, वो नफ्स फल फूल के कुप्पा बन जाता। अब ये नफ्स से एक बात याद आ गई, जो जूते खाए थे बड़े शाह साहब से, हम लोग ख्वाब देख लेते हैं, मुसीबत मेरी आती है तो मैं मजाक में कुछ लोगों से कहा करता हूँ कि भाई मैं तो अपने दरवाजे के बाहर एक बोर्ड लगवाने वाला हूँ, अपने नाम का बोर्ड उतरवाऊंगा सरफाज की बजाय ख्वाबों का मारा, कि ख्वाब लोग देखते हैं, शामत मेरी आती कि सुनाए बगैर टलते नहीं वो। तो हुआ ये कि मैं चूंकि सरकारी नौकरी में था तो बाज का तो उसकी मजबूरियां ऐसी आन पड़ती थी कि एक लम्हा नहीं मिलता था। तो एक दिन मैंने सुबह फजर की नमाज के बाद जब सोया तो ख्वाब देखा। ये ख्वाब के सिलसिले में एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जैसे मुख्तलिफ ख्वाब मुख्तलिफ किस्मों के हैं और वो डिपेंड करता है कि किसने देखा, देखने वाले की रूहानी कैफियत क्या है, तो उसके मुताबिक होगा कि सच्चा है या झूठा है, या आदमी के अपने ख्यालात हैं या मुस्तकबिल की इत्तला अल्लाह दे रहा है ख्वाब के जरिए। वो डिपेंड करता है कि इंसान की रूहानी कैफियत क्या है, वो बालिदगी के किस मकाम पर है, लताफत के किस मकाम पर है। इसी तरह जो ख्वाब जो लोग इबादत करते हैं अल्लाह को याद करते हैं नेक हैं, तो उनके ख्वाब भी जो फजर से पहले के ख्वाब हैं वो आमतौर पर सैर होती है कि रूह सैर करती है उनकी, और फजर के बाद जब फजर पढ़ने के बाद सोते हैं फिर जो ख्वाब आते हैं वो आमतौर पर इत्तला होती है। मैं आमतौर पर कह रहा हूँ, हमेशा नहीं, 99-98% केसेस में वो इत्तला होती है। तो वो फजर की नमाज पढ़ के जो सोया तो वो एक ख्वाब देखा, अगरचे कभी कुत्ता पालता नहीं लेकिन मुझे जनून की हद तक शौक है कुत्ते का। एक नस्ल है जर्मन शेपर्ड जिसे उर्फ आम में अल्सेशन भी कहते हैं, इसके अंदर 3-4 तरह के रंग आते हैं। सबसे नापसंदीदा तरीन या सबसे घटिया वो है जो बिल्कुल वाइट है, वाइट जर्मन शेपर्ड, वो इस काबिल नहीं होता कि उसको रखा जाए। फिर टैन एंड ब्लैक आता है, टैन एंड ग्रे आता है उसके अंदर, ये दोनों बड़े अच्छे रंग हैं। फिर एक नायाब है रंग उसमें, वो है जेट ब्लैक, टोटली ब्लैक, बहुत ही कीमती गिना जाता है। तो मैंने ख्वाब में वो जेट ब्लैक जर्मन शेपर्ड देखा, बहुत पला हुआ कदावर कुत्ता, बहुत खूबसूरत। तो अगले दिन बड़े शासक से मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि हजूर आज तो बहुत ही खूबसूरत कुत्ता देखा मैंने ख्वाब में, जर्मन शेपर्ड था और जेट ब्लैक जो कि बहुत कमयाब है। कहने लगे फिर? मैंने कहा कुछ नहीं, वो तो आपको मैंने अर्ज किया है समझने के लिए आपसे। मुझे फौरन फरमाने लगे कि ये बताओ कि तुमने अपनी पढ़ाई कितने दिन से छोड़ रखी है। तो मैंने कहा साहब हो गए कि 7-8 दिन हो गए। कहने लगे बस फिर वो अल्लाह ताला ने तुम्हें वार्निंग दी कि तुम्हारा नफ्स बड़ी तेजी से पल रहा है, तो ये दोबारा से इबादत शुरू करो तुम अपनी। अब वो हम लोग ख्वाब कुछ और होता है, इसी तरह एक ख्वाब, वो 1966 की बात है, ये उस वक्त मैं 21-22 साल का था, तो नई नई नौकरी शुरू की थी, तो ये वो दौर था मेरा जब मैं 40-42 वजीफे सुबह और 40-42 वजीफे रात में पढ़ा करता था, सुई गैस मुल्तान में था उस वक्त मैं। तो मैंने ख्वाब ये देखा कि एक हवेली है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, तो मुझे किसी ने कहा कि इस हवेली में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हुए हैं, तो मैं शौक के मारे भागा उधर को, तो वहां दरबान खड़ा था और जो ऑब्वियसली फरिश्ता था, तो उस फरिश्ते से दरबान से मैंने कहा कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। कहने लगे नहीं, तुम नहीं जा सकते अंदर। मैंने कहा क्यों? कि तुम्हारी दाढ़ी नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी से माफ़ फरमा दिया है, तो मुझ पर ये कैद नहीं। तो कह मैं नहीं मानता। तो मैंने कहा अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे साथ अंदर चलो, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हें पूछवा देता हूँ, वो कन्फर्म कर देंगे कि मुझे माफ़ फरमा दिया है। तो वो भी एक हजरत था। कहने लगा चलो। तो अंदर ले गया, तो बहुत बड़ा खुला सहन था, उसके बाद बरामदा सा था। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखे हुए थे, दो और साहिबान थे उनके साथ। तो मैंने जाके अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इनसे अर्ज किया है कि आपने मुझे दाढ़ी से माफ़ फरमा दिया है, लेकिन उसको ये यकीन नहीं कर रहा है, तो आप ज़रा इन्हें कह दीजिए। तो बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट थी, बहुत खूबसूरत। उसे मुस्कुराए तो दरबान समझ गया कि कन्फर्म कर दिया। तो ये मैंने ख्वाब वो भी फजर की नमाज के बाद ही देखा था, तो मुझे बड़ा मजा आया इससे, बहुत खुश था मैं। तो तीसरे चौथे दिन दफ्तर में एक काम कराने के लिए एक बुजुर्ग आए, तो हमारे एक कोलीग थे स्विगी में, लियाकत कुरैशी साहब। तो उन्होंने मुझसे कहा, वो उम्र में मुझसे तकरीबन दुगने या जरा इससे ज़रा होंगे, तो बावजूद इसके कि मैं काम के लिहाज से, ओहदे के लिहाज से उनके बराबर था, लेकिन कभी मैंने अपने कमरे में उन्हें नहीं बुलाया, उनकी उम्र की वजह से मैं खुद चला जाता था उठ के। तो वो साहब उनके पास आए, क्योंकि वो भी नेक आदमी थे। तो इन्होंने मुझे इंटरकॉम पे कहा कि ये बड़े नेक आदमी हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनका काम है। तो मैंने कहा ठहरिए, मैं उनके उनसे मिलने खुद ही आ रहा हूँ आपके पास। तो वो साथ ही कमरा था उनके, मैं वहाँ चला गया। तो उन्होंने तारुफ कराया कि अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं, और वाकई चेहरे पर नूर था उनके, बहुत नेक आदमी। तो काम तो दो मिनट में हो ही जाना था, तो क्या मुश्किल काम था। वो काम मैंने कर दिया उसी वक्त। तो उसके बाद उनसे बैठ के मैं इल्म की बातें करने लग गया। तो जैसे आज आप लोगों को शौक होता है कि शाह साहब को ख्वाब जरूर सुनाया जाए, मुझको भी उस वक्त शौक था। तो मैंने उनसे कहा कि हुजूर एक ख्वाब देखा मैंने 3-4 रोज पहले। तो कहने लगे फरमाइए क्या था। तो मैंने उन्हें ये पूरा ख्वाब सुनाया। तो मैंने तो इस खुशी से सुनाया कि मैंने ज़ियारत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर दाढ़ी से भी माफ़ फरमा दिया मुझे। तो वो साहब एकदम से क्या कहने लगे, कहने लगे सरफराज साहब ये बताइए आप क्या दरूद शरीफ कसरत से पढ़ते थे। मैंने कहा जी। तो आपने इसमें नागे किए हैं। मैंने कहा हाँ जी। कहने लगे बस फिर आप अब नागा ना कीजिएगा, पिछले नागे तो आपके माफ़ हो गए, अब आइंदा गलती मत कीजिए आप। तो कहने लगे ये जो दाढ़ी की बात थी, ये वो दरूद शरीफ जो आपने नहीं पढ़ा था, आपने जो कोताही की थी वो माफ फरमाया था आपने। तो ख्वाब हम समझते कुछ हैं कि उसका मतलब कुछ होगा, होता कुछ और है।
वो ये कहते हैं कि जो दरूद इब्राहिमी है वही असल दरूद है, बाकी जो दरूद हैं वो खुद बनाए गए।
सही बात है।
तो वो पढ़ना फिर
नहीं। नहीं, बात यह है कि आप सलाम भेजते हैं, पहली बात तो यह है कि जो लफ्ज दरूद है ये अरबी का है ही नहीं। अरबी में इस ये दरूद नाम का कोई लफ्ज नहीं है, और फारसी का लफ्ज है, और ये फारसी में भी डिराइव हुआ है। जब वहां आतिश प्रस्त थे तो उनकी इबादत का एक मखसूस तरीका था, कई तरीके थे उनके, उसमें से एक तरीका जो था उसको वो दरूद कहते थे। ये वहां से डिराइव हुआ और फिर ये फारसी अदब का हिस्सा हुआ, और वहां से हम लोगों ने इम्पोर्ट कर लिया। यही वजह है कि किसी अरब के सामने अगर आप दरूद कहेंगे तो समझ नहीं पाता कि दरूद कह किसको रहे हैं आप। तो ये आप सलाम भेजते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तरीका तो वो है जो सिखाया गया, नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सिखाई थी, और ये दो मरतबा वाक़या पेश आया कि खाना काबा के पास उसके करीब बिल्कुल हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़वाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये सलाम भेजने का एक तरीका तो आया। उसके बाद जो आमा कराम थे اور عالم حضرات تھے, فقیر لوگ تھے, انہوں نے درود و سلام جو تھا وہ پھر ڈیولپ کیا. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں, فورسز میں جو یونیفارم سروسز ہیں جس میں یونیفارم پہنی جاتی ہے اس میں سیلوٹ کیا جاتا. وہ در حقیقت اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ سیلوٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہ دکھا رہا ہے آپ کو اپنا خالی ہاتھ, میرا ہاتھ خالی ہے اور میرے پاس آپ کے لیے دوستی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر فوج گراؤنڈ لینڈ فورسز کا آدمی ہے, بڑی فوج کا, تو وہ سیلوٹ جو ہے وہ کسی اور انداز میں کرے گا, ہاتھ پورا یوں دکھا رہا ہے آپ کو, نیوی والا یوں کرتا, لیکن کرتے سب سیلوٹ ہیں. اس کی جو اس کے پیچھے مقصد ہے وہ وہی ہے کہ سلامتی اور خیر ہے کہ میرا ہاتھ خالی ہے. یہی حال اس درود و سلام کا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم بھیجتے ہیں. تو وہ انہوں نے ڈیوائز کر لیا, تو آپ سلام بھیج رہے ہیں اور صلی اعلیٰ جو لفظ ہے وہ ہر درود شریف کا حصہ ہے. تو سلام آپ سلامتی بھیجتے ہیں تو پڑھ لیجئے, آپ اس کو دوسرے کو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن درود ابراہیم پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیے, پڑھنے میں حرج نہیں ہے کوئی, وہ تو ایک باریک نقطہ نکال رہے ہیں. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ درود پڑھ کے کرتے کیا ہیں آپ, اس کی بنیاد کیا ہے درود کی. دیکھیے پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو لیکن خلاف ادب ہوگا, ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو باوضو پڑھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ادب پہلی شرط ہے.
ٹی وی پہ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں,
تو اللہ ہم تو اللہ کے آگے بھیج رہے ہیں, اللہ کس کے آگے بھیج رہے ہیں؟
نہیں کس کے آگے نہیں بھیج رہا, اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیج رہا ہے.
اللہ کی تو بلیسنگ کن فیا کن کہے تو ہر چیز ہو جاتی ہے, اللہ کے تو ایک وہ ہے,
تو یہ بھی کن فیا کن ہی کا ایک حصہ ہے کہ سلامتی بھیج رہا ہے, اسی کا انداز ہے. کیونکہ کن لفظ جو ہے وہ تو تخلیق کے لیے استعمال ہوتا ہے, ہو جا, لیکن یہاں تو ہو جا والا معاملہ نہیں, یہاں تو سلامتی بھیجنے کی بات ہے, تو وہ پھر لفظ چینج ہو جائیں گے, اس لیے وہ درود بھیجتا. ایڈمٹ نہیں کرتا میں, تو ایڈمٹ سب کو کرتا. دیکھیے فقیر لوگ عام طور پر یہ درود شریف پڑھتے ہیں جو آپ کے سر پر لگا ہوا ہے, تقریباً سبھی فقیر یہی پڑھتے ہیں, اور اس کے اثرات میں نے دیکھے ہیں واقعتاً تیز بھی ہیں, اس کا ریزلٹ کوئک ہے, اور تھوڑے سے ڈیفرنٹ بھی ہیں. چراغ دہلی صاحب
اور امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ سنایا ہے, کیا یہ ایک میں نے یہ فکرہ ہی کہوں گا جس میں کہا گیا رنگ دے رنگ دے مجھے اپنے ہی رنگ میں رنگ دے, جھیتو مانگے رنگ کی رنگائی میری جوانی گروی رکھ لے. یہ امیر خسرو, کیا یہ اس واقعے سے پہلے ہوا یا بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اپنے ہی رنگ میں رنگ دے؟
یہ پہلے کا ہے, یہ پہلے کا ہے. وہ تو عشق کے بڑے اعلیٰ مقام پر چلے گئے تھے, مرشد کے ساتھ عشق میں بہت ہی آگے گئے تھے, تو میرا خیال ہے ضرب المثل ہی ہے اب تک.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی درود ہے؟
جی ایبریویٹڈ فارم ہے, لیکن اگر پڑھیں تو مکمل پڑھیے.
یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود ابراہیم
کوئی سا پڑھ لیجئے, لیکن یہ ایبریویٹڈ فارم ہے, صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ایبریویٹڈ فارم ہے نا, تو مقصد تو اس سے پورا ہو جاتا ہے, لیکن اگر پڑھنا ہے تو پھر مکمل پڑھیے اس کو. جیسے یہ درود شریف اوپر لگا ہوا ہے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم, یہ مکمل ہے. اب اسی کو اگر آپ ایبریویٹ کر لیں اس کو تو صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے گا.
شاہ صاحب گزشتہ اتوار کو جب میں جا رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا ایک شاہ صاحب پہ اسی بارے میں جو خلافت کے بارے میں آج آپ نے فرمایا یہی کوشچن تھا. جب آپ نے اچانک میری طرف دیکھا تو میں نے کہا شاہ صاحب کو فوری طور پر اندازہ ہو گیا کہ اس کے دل میں کیا خیال ہے. بہرحال آپ نے جو خلافت کے بارے میں آج فرمایا ہے یہ تقریباً میں نے 16 سال کے بعد دوبارہ سنا ہے آپ سے. 16 سال پہلے میں نے سنا تھا, اس کے بعد 16 سال کے بعد پھر آج سنا ہے. لیکن شاہ صاحب آپ نے ایک چیز ہے وہ بالکل آپ نے جنرل فرما دی ہے لیکن اسپیشلائز نہیں کیا ہے کہ آئندہ آپ کو اپنا علم جو ہے کس کو تفویض کرنے کا ارادہ ہے. جنرلی تو آپ دے ہی رہے ہیں لیکن اسپیشلی کسی کے مخصوص شخصیت کا نام نہیں لیا آپ نے, آپ اس میں کچھ بیان فرمائیں گے؟
اس میں دیکھیے خلافت وہ آپ نے خود ہی فرما دیا کہ ہر آدمی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. دیکھیے خلافت ایز سچ کوئی انعام تو ہے نہیں, امپلائڈ سینس میں کہہ لیجئے اعزاز ہے لیکن انعام تو ہے نہیں, وہ تو بہت بھاری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. تو میں اگر کسی کو دوں گا خلافت تو روایت کے مطابق اسی آدمی کو دوں گا جو اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر لے. تو اہل ثابت کرنے کے لیے تو بنیادی شرط تو یہ ہے کہ دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل گئی ہو, یہ بنیادی شرط ہی ہے. اس لیے جب بھی آپ لوگوں سے میری گفتگو ہوتی ہے میرا تمام تر زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت سے جان چھڑا لیجئے کسی طرح اور دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کر لیں. تو یہ دو چیزیں بنیاد ہیں ہر چیز کی. وہ جس وقت کوئی صاحب ایسے سامنے آئے یا اس حد تک تیار ہو گئے تو میں ضرور ان کا نام آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں گا.